नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय एक। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण और श्लोक संख्या है 16, 17 और 18। तो 16 और 17 का मैं रिसाइट करता हूं और 18वां जो श्लोक है वो आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। पहले मैं दो श्लोक बोलूंगा, 18वां श्लोक आपको दोहराना है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको कायस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकी च अपराजितः। इसको आपको मेरे पीछे दोहराना है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। कोई दोहराना चाहता है तो एक एक श्लोका बोलिए, 16, 17, 18, एक के बाद एक। पहले 16 बोलो, फिर 17 बोलो, फिर 18 बोलो। बोलो। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलम सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको कश्यस्य परमेश्वास शिखंडीश महारथः दृष्टदम्नो विराटस्य सात्यकीश पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। और कोई? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको कायस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्न विराटस्य सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहो शंकान दद्मो पृथक् पृथक्। और कोई अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवस्य सुगोष मणिपुष्पको काशस्य परमेश्वासः श्रीखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकी च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंकान दद्मो पृथक् पृथक्। शब्दार्थ अनंत विजयम, अनंत विजय नाम का शंख, राजा राजा कुंती पुत्र कुंती के पुत्र युधिष्ठिर युधिष्ठिर नकुल नकुल सहदेवा सहदेव ने च तथा सुगोष मणिपुष्पको सुगोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख काश्यः काशी वाराणसी के राजा ने च तथा परम ईशुआसः महान धनुर्धर शिखंडी शिखंडी ने च भी महारथः हजारों से अकेले लड़ने वाले दृष्टद्युम्नः दृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने विराटः विराट राजा जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास के समय शरण दी च भी सात्यकी ही सात्यकी युयुधान श्रीकृष्ण के साथी च तथा अपराजितः कभी न जीता जाने वाला सदा विजयी द्रुपदः द्रुपद पंचाल के राजा ने द्रौपदेयः द्रौपदी के पुत्रों ने च भी सर्वशः सभी पृथ्वीपते हे राजा सौभद्रः सुभद्रा अभिमन्यु ने सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने च भी महाबाहु विशाल भुजाओं वाला शंखान शंख दद्मो बजाए पृथक पृथक अलग अलग। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे राजन कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुगोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने का यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के होने राजा दूसरा के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमों विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछले कई दिनों से आप श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप के पहले अध्याय के ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो देखिए गीता महात्म्य में एक श्लोक आता है, एकम शास्त्रम देव के पुत्र गीतम, एको देव देव के पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानु कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के इस युग में लोगों को अगर कुछ खरीदना हो तो शॉपिंग मॉल में जाते हैं, एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है ना। तो ये श्लोक है गीता महात्म्य का, कलयुग के लोगों के लिए परफेक्ट है। एकम शास्त्रम देव के पुत्रम गीतम, एक ही शास्त्र है इस कलयुग के लोगों के लिए। कौन सा है? देवकी पुत्रम गीतम, देवकी पुत्रम गीतम। ये जो गीता है ये भगवत गीता ने गाया हुआ गीत है, देवकी पुत्रम गीतम। और एको देव देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान की आपको पूजा करनी है, भगवान कृष्ण की। एको मंत्र से तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र दिया गया है कलयुग के लिए। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही कर्म है, कौन सा? कि उस परम ईश्वर भगवान की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना। तो हमारे आचार्यों को पता था, इसलिए गीता महात्म्य में लिख दिया उन्होंने, कलयुग में मौल संस्कृति आने वाली है तो हमें भी शास्त्रों में मौल संस्कृति लानी चाहिए। तो एक ही बता दिया सबके लिए शास्त्र। और भी गीता के महात्म्य में एक श्लोक और आता है जिसमें बोलते हैं, मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम संसार मल नाशनम। अर्थात मनुष्य जल स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर में मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो आप लोग कितने लोग, हम लोग कितने लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि रोज हमें गीता अमृत का पान करने को मिल रहा है ना। ये जो हम श्लोका जो बोलते हैं ना, जैसे रिपीट करते हैं, रिपीट करने को बोलते हैं, वो क्यों बोला जाता है? उसके बारे में एक मुझे कथा याद आ रही है कि एक सुशर्मा नाम का ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया था उसने, लेकिन फिर भी उसके कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं थे। वो बहुत दुष्ट व्यक्ति था, दूसरों को तकलीफ देने में उसको बड़ा आनंद आता था और हर तरह के गलत काम वो करता था। अपनी उपजीविका चलाने के लिए वह दूसरों के यहां चोरी करता था, चोरी करके उपजीविका चलाता था। शराब भी पीता था, मांस भक्षण भी करता था, व्यभिचारी भी था। तो सब उसकी क्रियाएं जो थी, सब जो कर्म थे, सब पाप पूर्ण ही थे। उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं छोड़ी थी जो करने लायक ना हो, सब बुराई कर चुका था, कर रहा था। तो एक दिन उसने सोचा कि एक संत थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा फलों का बगीचा तैयार किया था, उसमें बड़े अच्छे अच्छे फल आए थे। तो इसका काम धंधा ही था अपनी उपजीविका की, दूसरे के यहाँ पे चोरी करके उपजीविका चलाऊं। तो उसने बोला कि इस महात्मा के बगीचे में जाऊंगा, थोड़े फ्रूट्स मैं तोड़ूंगा और उसको अगर मैं बाजार में बेचूंगा तो अच्छे दाम प्राप्त हो सकते हैं, तो ऐसा करता हूँ। और वो महात्मा थे, उन्होंने कोई चौकीदार तो रखा नहीं था, सब भूमि गोपाल की और सब गोपाल का ही है, इसके सब बिंदास थे और महात्मा के यहाँ चोरी भी कौन करेगा। लेकिन ये दुराचारी था, उसने सोच लिया कि महात्मा के यहाँ पे बगीचे में जाके फल तोड़ूंगा। तो बोला, तो रात को रेडी होके गया बगीचे में और फल तोड़ रहा था। तो इतने में क्या हुआ, उस बगीचे में कहीं से एक सर्प निकल आया और उसको उसने दंश कर लिया और सर्प इतना जहरीला था कि उसकी तात्काल मृत्यु वहीं हो गई। और मृत्यु के पश्चात फिर यमदूत आए, कोई विष्णुदूत तो आने वाले नहीं थे, यमदूत आए और उसको लेके गए यम दरबार में। तो जब चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा पढ़ा तो बोला, ये तो सीधा नरक में ही वास करने वाला है। तो अनंत काल तक बेचारा नरक में सड़ता रहा, एक नरक से जाके दूसरे नरक में, दूसरे नरक से जाके तीसरे नरक में। जितने भागवतम में जितने नरकों का उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया, सब नरकों में उसको जाने का मौका प्राप्त हुआ, सद्भाग्य प्राप्त हुआ। फिर सब नरकों की उस यात्रा करते करते लास्ट में उसको उसके कर्म अनुसार एक बैल की योनि प्राप्त हुई। तो एक बैल की योनि में वो जन्म लिया, उसको शरीर बैल का शरीर मिला। तो उस बैल को एक बोझा जो ढोने वाला होता है, जो बोझा ढोने का काम करता है लोगों के लिए, उसने खरीद लिया कि ठीक है, मैं इसका उपयोग बोझा लादने के लिए करूंगा तो मेरा काम में आएगा। तो वैसा ही उसके यहाँ पे वो बोझा ढोने का काम करता रहा 7-8 साल तक। फिर धीरे धीरे उसकी उम्र होने लगी। तो एक दिन उसने क्या किया, उस आदमी ने, कि उसकी ताकत से ज्यादा बोझा उसके ऊपर डाल दिया एक दिन, कि वो खींच नहीं पाता था, इससे ज्यादा डाल दिया। तो उसने थोड़ी देर खींचा, बीच बाजार में आया तो बोझा ज्यादा होने की वजह से वो बाजार में ही वो गिर गया उस वेट के कारण और उठ नहीं पा रहा था और उस बोझ के कारण वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। तो बीच बाजार में कुछ भी घटना घटती है तो लोग तो जमा होती ही है तमाशा देखने के, लोगों का तो वही होता है, क्या हुआ है पहले देखो जाके, है ना। तो बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन उस जो शहर था, उस जो गांव था, उस गांव के लोग बड़े पुण्यात्मा थे। तो जैसे ही उस बैल को तड़पता हुआ देखा उन्होंने, तो उनके मन में थोड़ी दया उत्पन्न हो गई। तो उसमें एक पुण्यात्मा थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कुछ किए हुए पुण्य कर्म याद किए और बोला कि मैंने ये जो पुण्य कर्म किए, इसका फल इस बैल को प्राप्त हो। तो उनकी देखा देखी हर कोई अपने अपने पुण्य कर्म को याद करके उस पुण्य कर्म का फल उस बैल को देता था। ये जो पुण्यात्मा होते हैं वो किसी का कष्ट नहीं देख सकते हैं, तो इस प्रकार ऐसे अपने पुण्यों का कर्म का फल वो प्रदान करते हैं। तो सबने अपना अपना पुण्य कर्मों का फल उस बैल को प्रदान किया। तो उस भीड़ में एक प्रोस्टिट्यूट भी थी, एक वेश्या भी उस भीड़ में थी। तो सब लोग दे रहे हैं तो इसको भी लगा मैं भी दूं, लेकिन ये सोचने लगी मैं तो कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं अब तक, तो मैं क्या दे सकती हूं उस बैल को। लेकिन फिर भी उसने बोला कि अगर मैंने कहीं जिंदगी में, मेरी लाइफ में कोई पुण्य कर्म किया हो तो उसका फल इस बैल को मिल जाए। और जैसे ही उस वेश्या ने उसका वो फल उसको दे दिया, ऐसा वचन बोल दिया, उसका शरीर छूट गया उस बैल का। फिर से कोई विष्णुदूत तो नहीं आने वाला थे, यमदूत ही आए, उसको लेके गए। और फिर उसको पुराने दिन याद आ गए, अभी तो पुराने भी दिन आ गए, बोले नरकों में सड़ना पड़ेगा, फिर से वही चालू हो गए, घबराने लगा यमराज के पास जाने के लिए। तो बस यमराज जी ने बोला, चित्रगुप्त को पूछा, देखो इसका क्या लेखा जोखा है। तो चित्रगुप्त ने बोला इसका तो कुछ नहीं, इसके तो सब सारे कर्म, जो पाप कर्म किए थे सब नष्ट हो गए, ये भी हक्का बक्का रह गया, ऐसे कैसे नष्ट हो गए, मैं तो बड़े पाप कर्म किया हूं, एकदम ऐसे कैसे नष्ट हो गए। तो वो यमराज से उसने पूछा कि देखिए यमराज जी, मैं तो, मेरे को पूरा यकीन है, पक्का यकीन है, आप में कुछ गलती की होगी, आपकी लिखावट में कुछ गलती की होगी, आप फिर से चेक कीजिए, मेरे को पक्का यकीन है मैंने कोई ऐसे कर्म की नहीं किए हैं, सब पाप कर्म ही किया हूं, आप फिर से चेक कीजिए। नहीं नहीं बोले, आपके पूरे सारे कर्म माफ हो चुके हैं, जो आपने पाप कर्म कर चुके हैं उसके फल पूरे माफ हो चुके हैं, आपको अभी नरक में जाने की कोई चांस नहीं है, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले आप जब शरीर त्याग रहे थे बैल की योनि में, तो वहां एक वेश्या थी, और उस वेश्या ने बोला था कि मेरे कुछ पुण्य कर्म किए हो तो उसका फल इस बैल को प्राप्त हो, और उसने जो फल आपको अर्पित किए थे उस फलों के वजह से आपके सारे पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं। तो फिर उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए, तो इसको बड़े अच्छे कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म प्राप्त हुआ, कुलीन ब्राह्मण के घर में। लेकिन किसी कारणवश उसको उसके पूर्व जन्म की स्मृति थी, जब वो बैल था और यमराज के साथ श्री राधाराज बिहारी भगवान की, श्री गौरनिताय की, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, और उसको वो भी याद था कि जो यमराज के साथ यमराज ने उसने जो बोला था कि किसी वेश्या की वजह से उस कर्म फल उसने प्रदान किए थे, उसकी वजह से तुमको सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। फिर जैसे जैसे बड़ा हो गया तो ये एक कुलीन ब्राह्मण की खातिर वेद अध्ययन करने लगा, सब उसके जो कार्यकलाप थे सब ब्राह्मणिकल थे, जो सुबह आपने सुने होंगे भागवतम क्लास में सुने ना, तो सब कर्मों किए थे। तो फिर उसको अचानक एक दिन याद आया कि ये जो मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त हुआ है, ये उस वेश्या ने कुछ पुण्य कर्म किए थे, उसका फल मुझे दिया था, उसके वजह से वो मेरे सब पाप कर्म नष्ट हो गए। तो इसको क्यूरियोसिटी जागी एक कि ऐसे कौन से कर्म किए होंगे उस वेश्या ने, और वेश्या तो कोई पुण्य कर्म करती नहीं, उसका कर्म ही पाप कर्म होते हैं, तो उसने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया होगा। तो वो ढूंढने लगा, उसी शहर में उसने जन्म लिया था जिस शहर में वो वेश्या थी, पर वो ढूंढने लगा उसको, ढूंढते ढूंढते उसको पता मिला कि यहाँ पे वो वेश्या रहती है, वो थोड़ी एजेड भी हो गई थी, थोड़ी बूढ़ी भी हो गई थी। फिर उसने उसको बताया था कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी, एक बीज बाजार में बैल मर रहा था और आपने ऐसा ऐसा वचन बोल के आपके पुण्य कर्मों के फल उसको अर्पित किए थे। तो इस वेश्या को याद आया, हाँ ऐसा तो कुछ मैं बोला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, लेकिन फिर भी बोले मैं वही बैल हूं अभी जो ब्राह्मण के घर में जन्म प्राप्त किया, वो आप ही ने जो मुझे फल प्रदान किए थे आपके पुण्य कर्म के, उसके वजह से मुझे ये उच्च योनि प्राप्त हुई है, तो मुझे आप बता सकते हैं कि आपने क्या कर्म किए थे, वो पुण्य कर्म किए थे। तो बोली मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, लेकिन हाँ एक बात है कि मेरे घर में ये एक तोता है, ये तोता है ना कुछ संस्कृत में कुछ रटन करता रहता है, कुछ रिसाइट करता रहता है, उससे मेरा हृदय जो है वो शुद्ध हो रहा है, और मैंने वही सुन के और वही मैंने स्मरण करके आपको उस श्रवण का फल प्रदान किया था। तो फिर ये तोता क्या बोलता है, ये उसको इसके अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि ये तोता क्या बोलता है। तो फिर ये दोनों चल के उस तोता के पास गए। फिर वो तोता से पूछने लगा कि आप ऐसा क्या रिसाइट करते हैं जिसकी वजह से इसने श्रवण किया और उसका श्रवण का फल ऐसा हुआ कि मेरे को सारे पाप कर्म नष्ट, मेरे पाप कर्म नष्ट हो गए, मुझे इतना अच्छा मनुष्य देह प्राप्त हुआ। तो वो तोता फिर उसको भी अपना पूर्व जन्म याद था, वो बोला कि मैं भी एक ब्राह्मण था पिछले जन्म में, मेरे भी जो कर्म थे कुछ अच्छे नहीं थे, वो सेम उसके जैसा ही था। तो सेम वो मरने के बाद वैसे फिर से यमदूत यमलोक में गया, बहुत सारे दिनों तक उसने यातनाएं भेजी, यातनाएं उसने ली, फिर पूरा टूर करके फिर से उसको तोते का योनि मिला। तोते का योनि मिला तो जब उसने एज अ तोता वो जब छोटा था तो उसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों मर चुके हैं। तो ये जो उसका घोंसला था, घोंसले में बेचारा नदी के किनारे एक पेड़ था वहाँ पे उसका घोंसला था, घोंसले में ही अकेला ही। अब मेरे मम्मी पापा अब आएंगे और मेरे को दाना खिलाएंगे, उसके भी पर निकल नहीं आए थे और भूख से एकदम ऐसा बोलते हैं उसको तड़प रहा था। तो थोड़ा आगे उस घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो क्या कोशिश करते करते वो घोंसले से नीचे गिर गया। और पंख तो ज्यादा थे नहीं और भूख भी बहुत लग रही थी, तड़प रहा था बेचारा भूख से। तो क्या था, वो नदी के किनारे था और पास ही में कुछ ऋषि लोगों का आश्रम था और ऋषि वहां पे नदी पे स्नान करने आते थे। तो कुछ ऋषि आए थे वहां पे स्नान करने, स्नान करके जा रहे थे तो उन्होंने देखा ये तोते का जो बच्चा है वो बड़ा तड़प रहा है, तो उन्होंने उसको उठाया और अपने साथ आश्रम लेके गए। तो ऐसा कि मुझे आश्रम लेके गए और वहां पे उन्होंने मुझे खाने को दिया, मेरी अच्छी तरह से देखभाल की और वहां के जो ऋषि कुमार थे उनके साथ मैं रहा। तो वो जो ऋषि कुमार थे वो गीता का अध्ययन कर रहे थे और गीता के श्लोक का वारंवार उच्चारण कर रहे थे, रिसाइट कर रहे थे। तो मैं भी उनके पीछे पीछे वो श्लोक उच्चारित करता रहा। तो मैं वो रट रहा था, वो जैसे जैसे बोल रहे थे तो मेरे को पूरे श्लोक याद हो गए। तो एक दिन मैं ऐसे ही श्लोक रट रहा था तो एक जो चोर था वो चोर मेरे को दिखा रहे, तो बोलने वाला तोता है, कुछ संस्कृत में बोल रहा है, अगर इसको चुरा के लेके जाऊंगा तो मेरे को अच्छे दाम मिलेंगे। तो चोर मेरे को वहां से ऋषियों के आश्रम से चुरा के लेके गया और बाजार में इस वेश्या को मुझे बेच दिया और मैं वही श्लोक बार बार रटन करता हूं। तो ये जो भगवद गीता है ये भगवान की स्वयं वाणी है, कहने का तात्पर्य है कि इसके श्लोक हम जब बोलते हैं या सुनते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। तो ये हमें श्लोक जोर से उच्चारण करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए उसके लिए, तो जोर से उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, हम श्लोक पे आते हैं। तो ये जो भगवद गीता का पहले अध्याय में अभी ये जो श्लोक बोल रहे हैं ये संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया युद्ध स्थल में, तो उसके जवाब में ये अभी ये श्लोक बोल रहे हैं। तो इस श्लोक में महाराज धृतराष्ट्र को पृथ्वीपते नाम से संबोधित किया गया है। श्लोक नंबर 18 में देखिए, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते। तो महाराज धृतराष्ट्र को यहां पे पृथ्वीपते बोला गया है। पृथ्वीपते मींस जो पूरी पृथ्वी का एम्परर हो, राजा हो। तो 5000 वर्ष पूर्व जो हस्तिनापुर था उसके कंट्रोल में पूरा पृथ्वी का राज्य था और इसमें जो भी राजाओं का उल्लेख हुआ है जैसे काशीराज है, विराट है, तो ये जो राजा थे, इनके जो राज्य थे ये हस्तिनापुर के राज्य के अधीन रहा करते थे। और कुरुवंश का एक क्षत्र राज्य था इस पृथ्वी पे 5000 वर्ष पूर्व। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अभी जो कंट्रीज है जो एक दूसरे से दूर दूर है, तो पहले सब भूमि जो थी ऐसी जुड़ी हुई थी, पता नहीं उसमें कितनी सत्यता है। और कुछ पृथ्वी की प्लेट्स इधर उधर खिसकने से वो थोड़ा थोड़ा दूर होते गए, ऐसा मैं पढ़ा था। तो इस प्रकार इस पूरे पृथ्वी पर कुरुवंश का राज था। और दूसरा यहां पे एक और उल्लेख आता है कि जो युधिष्ठिर महाराज को भी यहां पे राजा करके संबोधित किया गया है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, हे राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, ऐसा राजा करके संबोधन किया गया है। देखिए आपको याद होगा तो सेकंड वर्स भगवद गीता का जो दूसरा वर्स है उसमें भी संजय जो है वो दुर्योधन को राजा करके संबोधित करते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानिकम, है ना, उसमें भी दुर्योधन को राजा करके संबोधित किया जाता है। और यहां पर भी संजय जो है वो बड़ी चतुराई से महाराज युधिष्ठिर को भी राजा संबोधित करते हैं। मींस ये जो युद्ध हो रहा है दो राजाओं के बीच हो रहा है, इसमें युद्ध जो होता है दोस्तों समान व्यक्तियों के बीच होना चाहिए, तो यहां पे दो राजाओं के बीच युद्ध हो रहा है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी, यानी अत्यंत चतुराई के साथ। देखो संजय जो है वो जो महाराज धृतराष्ट्र के थे वो सलाहकार समिति में थे सलाह देने के लिए, तो जो मंत्रिमंडल में होता है अगर राजा को कोई एडवाइस भी देना हुआ तो राजा को इतना आप इस तरह से एडवाइस देते हैं कि राजा को कष्ट ना पहुंचे, उसको बुरा ना लगे, क्योंकि बुरा लगेगा तो निकाल देगा। ऐसा कब हुआ था कुछ पास टाइम्स पता है? यस, विदुर को, विदुर भी महामंत्री थे और वो जब एडवाइस दे रहे थे तो दुर्योधन बड़ा क्रोधित होकर उनको निकाल दिया था। और एक रामायण में विभीषण को भी निकाल दिया था। तो ये संजय जान चुका था, तो इसने बड़ी चतुराई से पहले तो दुर्योधन को, पहले सेकंड श्लोक में जब जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया पहले दुर्योधन को राजा बोल दिया, फिर अब यहां पे युधिष्ठिर को राजा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि इसमें प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये जान गए थे संजय, क्यों? देखो उन्होंने पिछले 14वें श्लोक में आता है, 14वें श्लोक में संजय बोलते हैं तथा श्वेते हरियुक्ते महति स्यनंदने स्वनंदने स्थितो माधवा पांडवा चैव दिव्य शंखो प्रदद्मतु। इसमें देखो भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया है। यहां शब्द आता है माधवा पांडवा चैव दिव्यो शंखो, दिव्य बोला गया है। क्यों दिव्य बोला गया है? दिव्य के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं, यानी ये उसने पहले ही मेंशन कर दिया था। यहां से उसकी क्या बोलते उसको, उसका ओपिनियन वो बता रहा था कि क्या होने वाला है। क्योंकि जयस्तु पांडुपुत्राणाम एशाम पक्षे जनार्दन, जय सदा पांडुपुत्रों के जैसे ही की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके पक्ष में होते हैं, जय सदा उनकी होती है जिनके साथ कृष्ण होते हैं, है ना। तो हमें अगर जय चाहिए, हमें अगर सक्सेस चाहिए तो हमें कृष्ण किसका साथ आवश्यक है? कृष्ण का, है ना, हमें कृष्ण का साथ लेना चाहिए। तो क्या कृष्ण हमारे साथ है कि नहीं है? कृष्ण है हमारे साथ? कितने लोगों को लगता है कृष्ण हमारे साथ है? मोस्टली सबको लगता है। तो प्रॉब्लम क्या है, हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? यस, कृष्ण तो हमारे साथ है लेकिन हम कृष्ण के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम है। वो तो सदैव है हमारे साथ, हमेशा से है, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में हमेशा है, साक्षी बनकर बैठे हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करने की इच्छा करते हैं और अनुमति देने के लिए प्रदान कर बैठे हैं। लेकिन हम ही हैं जो इस भाव में रहते हैं, हमारे मन भाव में रहते हैं, इस भौतिक जगत का जो क्या बोल सकते हैं उसको, मूल आकर्षण का केंद्र बिंदु, वो बता सकते हैं क्या होता है मूल आकर्षण केंद्र भौतिक जगत का? ऋषभदेव अपने पुत्रों को कहा है 5th कैंटो में, वो कहते हैं पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतो गृह क्षेत्र सुप्ताप्त वित्तेर जनस्य मोहयम अहम अमेति। स्त्री तथा पुरुष के बीच का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है, ये मूल सिद्धांत है। इस भ्रांत धारणा जिसके फलस्वरूप स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं, हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं, मनुष्य अपने शरीर घर संस्थान स्वजन संतान स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है, इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरे के संदर्भ में सोचता है। तो तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर, हृदय हमारा हृदय जो है वो अटका हुआ है। ये मूल कारण है कि हम भोग करना चाहते हैं, अभी तो फिलहाल कोई बाहर का नहीं आता है, मैं मेरा अनुभव बताता हूं, आप लोगों का नहीं होगा। जब कभी दर्शन करता है, दर्शनार्थी होती है, बाहर के लोग भी आते हैं, समाज राधा राजबेरी के सामने खड़े रहते हैं, तो कभी कभी भौतिक सौंदर्य कभी सामने से गुजरा हो तो हमारी नजर मेरी नजर ऐसे चल जाती है, राधा राजबेरी सामने खड़े हैं लेकिन नजर ऐसे झुक जाती है, फिर मैं पश्चाताप करता हूं भगवान क्या है। इस तरह का आकर्षण है, आसान नहीं है लेकिन होता है। भगवान साक्षात खड़े हैं फिर भी भगवान को नहीं देखते, भगवान तो है हमारे साथ लेकिन हम नहीं है। तो भगवान को साथ, अगर हमें भगवान के साथ होना है तो क्या करना पड़ेगा? जो प्रभुपाद जी ने दिया है मॉर्निंग प्रोग्राम इवनिंग प्रोग्राम, उस सबको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, चैंटिंग अच्छे से करना पड़ेगा। कितने दिनों से कर रहा है प्रभु जी, नहीं हो रहा है, होता है क्या? नहीं ना। देखो ऐसा है, वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे कि छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को अगर फीड करना हो, उसको कुछ खाना खिलाना हो, तो माँ को उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, राइट? नहीं खाता है। आपने देखा होगा बहुत से घरों में ऐसा होता है, मोस्टली आप में से कोई तो बहुत अच्छे होंगे कि जो चुपचाप खाते होंगे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो माँ पहले उसके पीछे भागती है खिलाने के लिए, वो खेलता रहता है, खेलने में मगन रहता है, उसको खिलाएगी दो घंटे, फिर दौड़ेगा, फिर खिलाएगी, फिर दौड़ेगा, फिर खिलाएगी। लेकिन जब उसको आदत हो जाती है तो फिर खुद आता है माँ के पास, माँ भूख लगी है कुछ खाने को दो। तो ये जो हम साधना भक्ति अभी कर रहे हैं उसी प्रकार है, हमको मन के हमारे मन को इसमें लगाना है, क्योंकि मन को अभ्यास नहीं है ना। कितने दिनों से, कई सालों से, कितने जन्मों से हम भोग में ही पड़े हैं, न जाने कितने सालों से। ये तो कोई हमारा कुछ सौभाग्य होगा कि अभी इस्कॉन में आए हैं, जुड़े हैं। वैष्णव की कृपा है तो कुछ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। सोच रहे कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। ये कभी मत समझना कि मैं कर रहा हूं, हमारे करने से कुछ होता नहीं, भक्ति में करने से कुछ नहीं होता, कृपा से ही होता है। तो ऋषभ देव ना आगे भी बोलते हैं कि नायम देहो देह भाजान रोके कष्टान कामान हरते वीड बुझांगे तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्वम शुद्धे ददस्मात ब्रह्म सौख्यम दौनंदम। कि संसार में समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वो अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वो इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और शाश्वत टिकने वाला है। तो इस मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है तो इसका हमें पूरे पूरे उपयोग लेना चाहिए। हम ना बहुत कैजुअल लेते हैं, जब चीजें हमें आसानी से मिलती रहती है ना तो बहुत कैजुअल लेते हैं, और कैजुअल लेने से क्या होता है, कैजुअलिटी हो जाती है ना। तो कभी कैजुअल मत लो, हम इस्कॉन में आए हैं और कर रहे हैं तो उसको बड़े गंभीरता से लीजिए। और आप लोग सब येलो आर्मी वाले बैठे हैं तो आर्मी का एक रूल होता है, आर्मी में जैसे मिलिट्री में ऐसा बोला जाता है कि ट्रेनिंग में ना आप जितना पसीना बहाओगे उतना कम खून बहाना पड़ेगा आपको युद्ध के मैदान में, राइट। तो ये आपका ट्रेनिंग पीरियड है, अभी जितना पसीना बहाओगे, जितना अच्छे से आप सेवा करोगे, जितना उत्साह के साथ नाचोगे, जितना पसीना बहाओगे उतना आपको माया का प्रहार झेलने की शक्ति ज्यादा प्राप्त होगी ये ट्रेनिंग पीरियड में। जब पास आउट हो जाते हैं ना तो एक ईगो आ जाता है, अहंकार आता है। मेरी बात कर रहा हूं मैं, आपकी नहीं, मेरी बात कर रहा हूं। नाचने की इच्छा नहीं होती है, एक बड़ा एक नहीं मैं अभी सीनियर हूं ऐसा भाव आने लगता है धीरे धीरे, होता है ये। मैं भी जब ऐसे येलो कपड़े में था तो बोलते थे इधर से स्पीकर, मानते नहीं होगा होगा मैं तो नाच रहा हूं, फिर बहाने बनाने लगते हैं। ये माया ही अलग अलग तरह से खेल खेलती रहती है। तो जो भी है ना, जितना पसीना बहाना है अभी बहा लो, सेवा के लिए मना मत करो। हाँ ठीक है, कुछ हेल्थ ठीक है, कुछ है एक्सक्यूज देने के मतलब, क्योंकि अभी है ना, अभी नए नए आए हैं हम लोग तो सब उत्साह के साथ रहता है, सब उत्साह रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे होता है ना तो अभी तो किसी का आप दोष देखते नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे तो थोड़ा दोष देखने की वृत्ति जागृत हो जाती है, फिर दोषी दोष देखने लगते हैं। मैं तो मेरा ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग कृपया इस जो आपका ट्रेनिंग जो चल रहा है उसको अच्छे से लो, उसको आप बड़े गंभीरता से लो। जितना अच्छे से लोगे, जितना गंभीरता से लोगे, इसको जितना गंभीरता से आप लोगे, जितना अच्छे से लोगे। देखो एक एक और एग्जांपल मेरा बताता हूं। जब न्यू भक्त में थे तो हमको श्लोका 108 श्लोका दिए थे इंपॉर्टेंट बाय ऐड करने के लिए, तो मैं कुछ ही कर पाया श्री राधाराज बिहारी भगवान की, श्री गौर निताय की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, शायद आप लोगों को भी जाना लो, दो मिनट में मैं खत्म कर देता हूँ श्लोका बाय ऐड करने का। तो हम डिले करते गए, ज्यादा लोग नहीं थे तब, सुंदरान ठाकुर हमारे एचओडी रहा करते थे तो हम उनको कुछ बहाने बनाते थे, प्रभु जी याद नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है कुछ। मैं 20-25 108 तो नहीं कर पाया, मैं 20-25 श्लोका याद किया, बाद में कर लेंगे अभी क्या है। और अभी देखो भक्ति शास्त्र में 45 श्लोकाज है, उसको मैं कब से याद करने का प्रयास कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है। उस टाइम पे ना एक दिन में मैं 5 श्लोका याद करता था, क्योंकि एक मूड था उस टाइम पे। अभी माया ने इतना अंदर प्रवेश कर लिया है ना कि निकलना आसान नहीं होता है। इसलिए इस ट्रेनिंग को ना आप यूं ऐसे हल्के से मत लो। कोई कितना भी बुरा कहे ना यार ऐसे ही बोल रहे वैसे ही बोल रहे, बहुत सारी चीजें आएंगी दिमाग में। किसी किसी मेरा भी आचरण देख के आपको कभी लगेगा कि ठीक नहीं है, लगेगा ऐसा। लेकिन आप जितना आपके तरफ से जितना उसको गंभीरता से लोगे ना, ये आपका जो क्या बोलते हैं बेस बड़ा स्ट्रांग रहेगा ना, तो ऊपर की जो नींव इमारत है ना बहुत अच्छी रहेगी। ये ट्रेनिंग बेस है, तो इसको लो आप सीरियसली। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो फिर आप बाद में पूछ लीजिए, क्योंकि आपको जाना होगा, किसी को टाइम नहीं होगा। है किसी का प्रश्न? नहीं? ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा।